और आज हम प्रयत्नशील हैं कि इस बात को हम जानें, बड़े दिन का अर्थ मेरे लिए, बड़े दिन का अर्थ मेरे लिए। जरूर हम बहुत धूमधाम से तैयारी करते हैं, मनाते हैं, आनंद आते हैं, उस आनंद को दूसरों तक बांटते हैं, और बहुत सारे हमारे मित्रगण हैं, पड़ोसी हैं, दूसरे लोग हैं, इस बात की आशा करते हैं कि ओ अरे इन लोगों का बड़ा दिन आ रहा है। शायद कोई कुछ है जो कैरल सिंगिंग की प्रतीक्षा करते हैं, कुछ है दावत की प्रतीक्षा करते हैं, कुछ और प्रतीक्षा करते हैं, तो कोई बुरा नहीं है। परंतु यदि सब कुछ, जैसे भाई, यदि सब कुछ और जो खास चीज है वो अगर हम छोड़ दें तो बड़ा दिन बेकार होगा। और इसलिए हम जितना अधिक बार बार परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और बार बार उस पर प्रकाश, हम उसके प्रकाशन को प्राप्त करते हैं, हम परमेश्वर के भेद की बातों को अद्भुत रीति सीखते चले आते हैं। बाइबल बहुत प्यारी पुस्तक है, भेदों से भरी हुई है, परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा द्वारा इसको रचाया है और मेरे और आपके लिए दिया है ताकि हम इसको समझें, जानें और उसके अनुसार जी सकें। जब हम पुराने नियम को आरंभ करते हैं, तो जब पुराने नियम को आरंभ करते हैं, पुराने नियम का आरंभ करते साथ उत्पत्ति की पुस्तक का आरंभ, हम देखते हैं परमेश्वर के द्वारा मनुष्य की सृष्टि हुई और मनुष्य में परमेश्वर ने उस पुरुष में अपना श्वास डाला। लेकिन जब हम नए नियम को खोलते हैं तो हम देखते हैं नए नियम को खोलते साथ मत्ती सुसमाचार वर्णन करता है, मरकुस को छोड़कर फिर लूका वर्णन करता है, हम देखते हैं कि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर वो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आता है। यहां उत्पत्ति में सृष्टिकर्ता मनुष्य की सृष्टि कर रहा है, अब यहां पर सृष्टिकर्ता स्वयं मनुष्य बनकर आ रहा है। दूसरी बात, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को खोलते हैं, पहले अध्याय को और उनको पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि वो मनुष्य जो सृजा गया, वो सृजा गया उस पर शैतान ने आक्रमण किया और पाप के द्वारा परास्त किया। जब हम मत्ती की पुस्तक को खोलते हैं या लूका की पुस्तक में, जहां प्रभु यीशु मसीह के जन्म का संबंध है, और जब इस पुरुष के जन्म के बारे में देखते हैं, तो पुरुष ऐसा हुआ जिसने शैतान को परास्त किया और उसकी योजना को परास्त किया। वहां पर मनुष्य परास्त हुआ, यहां शैतान परास्त हुआ। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को खोलते हैं तो एक और अद्भुत बात को देखते हैं। उत्पत्ति में आगे बढ़ते हुए जब हम निर्गमन में आते हैं तो हम देखते किस प्रकार से मूसा एक चरवाह है, अगवा है, मूसा एक चरवाह है और अगवा है, और किस प्रकार से एक चरवाहे के लिए, उसके छुटकारे के लिए, उसके साथी को छुटकारे के लिए, उसके समूह के छुटकारे के लिए भेड़ों का बलिदान किया जाता है। लेकिन जब हम मत्ती में आते हैं और नए नियम सुसमाचार में आते हैं तो हम देखते हैं, यह अद्भुत लगता है कि यहां पर चरवाहा अपने भेड़ों के लिए बलिदान होता है। पुराने नियम में भेड़ का बलिदान हो रहा है, नए नियम में चरवाहे का बलिदान हो रहा है। ये भेद की बातें हैं, और जब हम परमेश्वर के वचन में और भी बातों को देखते चले जाते हैं तो बहुत कुछ अद्भुत लगता है। नए नियम में मत्ती और लूका में प्रभु यीशु मसीह के जन्म का बहुत ही स्पष्ट वृत्तांत है। यौना भी करता है, मत्ती का वर्णन करने का तरीका अलग है, लूका का वर्णन करने का तरीका अलग है। मरकुस ने यीशु के जन्म का वर्णन नहीं किया लेकिन सेवा का आरंभ से वर्णन करता है, लेकिन यूहन्ना भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म का जो वर्णन करता है, वचन देहधारी हुआ, उसे वर्णन करता है। और जब हम इन बातों को सीखते चले आते हैं, देखते चले आते हैं, तो हमें बहुत ही अधिक आनंद और आशीष मिलती है। लेकिन जो आज हमारा मुख्य स्थल है वो लूका, उसका पहला अध्याय है, और पहले अध्याय से हम 26 पद से, लेकिन थोड़ा सा लूका की पृष्ठभूमि में आपके सामने रखना चाहूंगा। लूका प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक नहीं था, लेकिन संभवतः कुछ लोग मानते हैं, कुछ विद्वानों का मत है कि जो 70 उसके शिष्य थे उसमें वो रहा, लेकिन बाद में आगे चल करके वो वैद्य बन गया। लेकिन वैद्य बनने के बाद वो पौलुस की समूह में, पौलुस की टीम में शामिल हो गया, और उसके साथ पौलुस और उनके साथियों में साथ उस समय मरियम जीवित थी, उस समय मरियम जीवित थी, और लूका मरियम के संपर्क में आया और मरियम ने बहुत सारी बातों को लूका से शेयर किया, बाता बताया, और तब लूका ने आगे चल के सुसमाचार में लिखकर यीशु के जन्म का वृत्तांत लिख दिया। विद्वान था, वैद्य था, समूह का सहायक था,
उसने भी प्रभु यीशु मसीह के साथ इस टीम में रहकर गस को उठाया था। गर्म नैनियम की पत्रियों में जाते हैं तो हम देखते हैं प्रेरित काम उसके 16 अध्याय के बाद से हम लूका को देखने लगते हैं। लेकिन जब हम और लूका के बारे में विचार करते हैं तो हम इस बात को भी देखते हैं कि उसने ना केवल ज्ञान को प्राप्त किया लेकिन उस अनुभव में होकर गया और वो देखता है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का जन्म। So, पहले पद से लेकर चार पद तक लूका पहले अध्याय के पहले पद से लेकर चार पद तक वो क्यों इस पुस्तक को लिख रहा है उसकी बातों को वर्णन करता है। वहां पर एक शासक है विद्वान है उसको वो लिख के इस सारी बातों को वर्णन कर रहा है लेकिन उसके नाम का अर्थ लिखा हुआ है यहां पर तीसरे पद में इसलिए हेत अति मान्यवर थियोफिलुस। ये थियोपलुस का नाम का अर्थ है परमेश्वर का प्रेमी परमेश्वर का प्रेमी। और अतः मतलब यह है कि ना केवल थियोपलुस को लिख रहा है लेकिन उन परमेश्वर के प्रेमियों को लिख रहा है और जो प्रभु परमेश्वर से प्रेम करते हैं ताकि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के वृतांत को जान सकें। और तब उसके बाद आगे जल करके वो कहता है मैं इसलिए इन सारी बातों क्रम अनुसार लिखूं जिससे कि तू उन बातों को वास्तविकता को जान ले जिनकी तुझे शिक्षा दी गई है। वास्तविकता को जान ले कोई मन गणत बातें नहीं है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में जो यीशु का जन्म का वृतांत दिया हुआ है चाहे लूका है चाहे मती है वो मन गणत मानते नहीं है वो वास्तविक है ऐतिहासिक है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक ऐतिहासिक घटना है एक विशिष्ट घटना है जो इतिहास में ऐसी नहीं घटी कभी और एक अद्भुत घटना है। तब उसके बाद पांचवें पद से लेकर वो आगे जो कि 25 पद तक एक और भविष्यवाणी करता है वो जो उसके वर्णन करता है और वो यूहन्ना के जन्म के बारे में है। यूहन्ना के जन्म यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का अग्रदूत अर्थात उससे पहले होकर मार तैयार करने के लिए आया था। इसी ने यीशु का मार तैयार किया इसी ने लोगों से प्रभु यीशु मसीह का परिचय कराया। यूहन्ना यद्यपि यीशु से पहले था पर यीशु से श्रेष्ठ नहीं था। यूहन्ना यीशु से यद्यपि यीशु से पहले था परंतु यीशु से श्रेष्ठ नहीं था। और जब हम आगे चलते हैं 26 पद से लेकर तब हम यहां पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म की उद्घोषणा है और उसमें उनका वर्णन है कि एक स्वर्गदूत आता है किस रीति से मरियम से बातचीत करता है और मरियम को सारी बातों को बताता है। मरियम आश्चर्यचकित होती है और तब वो बताता है कि ये कैसे कैसे क्या होगा। अब उसके बाद हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जब हम इस बात को देखते हैं तो थोड़ा ध्यान मैं मरियम के बारे में लाना चाहता हूं। आज संसार में बहुत लोग हैं और कई आंकड़े में बड़े हैं संख्या में जो मरियम को बहुत ऊंचा स्थान देते हैं हम सम्मान करते हैं लेकिन उस बात को हमें जानना चाहिए कि मरियम जगत की मां नहीं थी जैसे बहुत सारे लोग उसको मानते हैं खासतौर से जो हमारे रोमन कैथोलिक मत के लोग हैं उनकी ये मान्यता है लेकिन ऐसा नहीं था ऐसा नहीं। दूसरी बात मरियम कोई देवी नहीं है मरियम कोई देवी नहीं है। तीसरी बात मरियम यीशु और हमारे बीच में मध्यस्थ नहीं है। उनका मत यह है कि मरियम मां है और यदि हम पहले मरियम से प्रार्थना करेंगे तो मरियम मां है वो अपने बेटे यीशु के पास जाएगी उससे कहेगी तो मरियम मां होने के नाते अपने बेटे की सुन लेगी और हमारी भी विनती सुनी जाएगी। ये मत सही नहीं है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं हमें उन शिक्षाओं को भी समझना है ऐसा नहीं है लेकिन जरूर मरियम को परमेश्वर ने चुना है। क्यों चुना परमेश्वर ने क्यों चुना हम फिर से उस पद पर जाना चाहेंगे जो उत्पत्ति उसका तीसरा अध्याय और उसका 15 पद है। हमें बार बार इन पदों को याद करना है और मेरा कुछ स्वभाव है कि मैं उस पर जरूर जाता हूं। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 15 पद और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में तथा तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इस स्त्री के बीच में वो कह रहा है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में तथा तेरे और इसके वंश में, अर्थात स्त्री के वंश में, स्त्री के वंश में। ये परमेश्वर ने अपने वचन को कहा था, और वचन परमेश्वर वो परमेश्वर है जो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और अपनी बात को कहकर बदल जाए। गिनती की पुस्तक उसका 29 अध्याय उसका 29 पद, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। और इसलिए हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर ने जो कहा असंख्य सालों पूर्व जो से कहा है, उसको अपने समय के अनुसार अपने तरह से अपनी योजना में होकर उसने उसको पूरा किया है। परमेश्वर ने जो कई वर्षों पूर्व जो बात कही है, उसने अपने समय के अनुसार अपने तरीके से अपनी योजना में होकर पूरा किया है, क्योंकि वो परमेश्वर अपने वचन को अपने कथन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए परमेश्वर ने इस नारी स्त्री को चुना, इसलिए ना। लेकिन क्यों चुन लिया और कौन सी बातें थी, तो हम दो बात को देखना चाहेंगे, एक स्त्री नारी को देखना चाहेंगे और दूसरा उद्धारकर्ता यीशु को देखना चाहेंगे। एक स्त्री, एक नारी है जो मरियम है, उसको देखना चाहेंगे। दूसरी चीज, एक पुत्र जो जन्म ले रहा है, वो यीशु जो उद्धार करता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस स्त्री के लिए क्या लिखा हुआ है, छठे महीने के महीने में 26 पद पढ़ रहा हूं मैं, परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत नासरत नाम गलील में आया। जिब्राइल ये वो दूत था जिसको संदेश वाहक कहा जाता था, मिकाएल है, जिब्राइल है, हम करूब है, कई सारे स्वर्गदूत का नाम है। लेकिन अगर इन स्थलों को पढ़ेंगे जहां प्रभु यीशु मसीह के जन्म संबंधित है, चाहे आप मत्ती में जाएं, चाहे लूका में जाएं, हम इस स्वर्गदूत को पढ़ते हैं जो संदेश वाहक है और संदेश, विशेष संदेश लेकर आ रहा है। वो गलील में नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी जो दाऊद के वंश का था। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और भीतर आकर स्वर्गदूत ने कहा, हे प्रभु की कृपा पात्री। सबसे पहली बात, संबोधन क्या कर रहा है वो स्वर्गदूत जो एक संदेश को लेकर आया है, स्वर्गदूत जो एक भेद की बात को उसको बताना चाह रहा है, उस नारी से, उस स्त्री से, उस मरियम से क्या उसको कहकर संबोधित कर रहा है। वो उसको कह रहा है, हे प्रभु की कृपा पात्री। अर्थात क्या मतलब है, प्रभु ने उस पर कृपा की है, प्रभु ने उस पर कृपा की है, क्योंकि परमेश्वर को अपनी उस कही हुई बात को जो उसने उत्पत्ति में ठीक उसी समय कही थी जब मनुष्य पाप में गिरा था, उसने उसी समय ठान लिया था कि इस पाप से छुटकारे की मैं योजना को पूर्ण करूंगा, और इसी स्त्री को, इसी नारी को बाद में उस योजना को पूरा करने के लिए मैं उपयोग करूंगा। लेकिन अब इस संसार में वो एक मरियम है जिस पर उसकी दृष्टि पहुंच गई है, क्यों पहुंची है भी आगे चल के देखेंगे, लेकिन उस पर परमेश्वर की कृपा हुई है, और इस कृपा करके परमेश्वर ने उस स्त्री को चुना है। तो सबसे पहले मरियम की कोई विशेषता नहीं है, कोई बड़ी विशेषता नहीं है, उसके अंदर कुछ गुण थे जरूर थे, लेकिन उन गुणों की महत्ता इतनी अधिक नहीं है, परमेश्वर की कृपा की महत्ता सबसे बड़ी है। और वो मेरे और आपके जीवन से भी जुड़ा हुआ है कि परमेश्वर ने मुझ पर और आप पर भी कृपा की कि मुझे और आपको पाप से बचाकर, मुझे और आपको अपने संतान बनाकर चुन लिया अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। तब उसके बाद वो कह रहा है, कृपा पात्री सलाम, प्रभु तेरे साथ है, प्रभु तेरे साथ है। इस कथन को सुनकर वो अत्यंत घबरा गई और सोच में पड़ गई, ये किस प्रकार का अभिवादन हो सकता है, ऐसा कभी उसने सुना नहीं था, ऐसा उसने कभी देखा नहीं था, आश्चर्यचकित हुई किस प्रकार का अभिवादन है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो। लूका की पुस्तक को हम पढ़ते हुए, सुसमाचार को पढ़ते हुए
हम दो बात को विशेष रूप से और देखते हैं। करीब 15 बार उस लूका की पुस्तक में वो संदेश है जो भय से संबंधित है, भय से जुड़ा हुआ है। डर ना कर, भय ना खा, परमेश्वर भय से दूर करेगा, भयभीत ना होना, इस तरह के बार बार करके। और लूका इस बात पे फोकस करता है कि मनुष्य का जीवन इस संसार में भय में पाया जाता है। और ये कहां से आरंभ हुआ, मैंने पिछली बार भी शतक भी शेयर करा, ये अदन की वाटिका से शुरू हुआ। जब मनुष्य पाप में गिरा और पाप में गिरने के बाद मनुष्य ने क्या करा, रोज परमेश्वर पिता उसके पास आता था और आदम और हवा से बातचीत करता था, जब बातचीत करता था, लेकिन उस संध्या को जब परमेश्वर आया, ओ सुनसान है, ये आदम हवा दिखाई नहीं दे, परमेश्वर ने आवाज दी, हे आदम तू कहां है। तब उसके बाद आदम ने कहा, बातचीत होती है, आदम तब कहता है, मैं डर गया था और मैं छिप गया, मैं डर गया था और मैं छिप गया। अगर आप उत्पत्ति उसके पहले दूसरे तीसरे अध्याय में पढ़ें, सो आपको मालूम चल, तो डर कहां से उत्पन्न हुआ, ये डर शैतान का ओर से डर है, जो जिसके कारण आज मनुष्य एक तरह के आतंक के नीचे साए में दबा हुआ है। एक भय पर पवित्र परमेश्वर का भी भय है, लेकिन वो उसका शुरुआत, उसका आरंभ दूसरी तरह से होता है। लेकिन यहां पर जो भय की बात कह रहा है, तू भयभीत था, ये किस कारण भयभीत, अरे उसने सब शायद एक उजाला देखा, सब कुछ देखा और डर गई अपने आप। लेकिन वो कह रहा है, नहीं नहीं नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, डर नहीं। तो पहली बात लूका वर्णन करता है डर के बारे में। दूसरी बात, एक और बात लूका सुसमाचार में बार बार कहता है, आनंद आनंद आनंद, ये आनंद का सुसमाचार। और तीसरी बात एक और कहता है, जो सबके लिए होगा। सो तीन चीजें आप पूरे लूका के सुसमाचार में मुख्य बात में देखेंगे, परमेश्वर भय को दूर करता है, परमेश्वर आनंद को देता है, और परमेश्वर ये सबके लिए करता है जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके सुसमाचार का आदर और सम्मान करते हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे, तब कह रहा, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह है। पहला संबोधन, तू परमेश्वर की कृपा पात्री है। दूसरा संबोधन, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ। अनुग्रह क्या है? परमेश्वर के हृदय से मुफ्त में निकली गई वो आशीष है जिसके योग्य हम नहीं है। फ्री, मुफ्त में निकली हुई वो एक महान आशीष है जिसके योग्य हम मनुष्य नहीं है। ये परमेश्वर का अनुग्रह उस स्त्री के लिए ऊपर हुआ, और वही अनुग्रह परमेश्वर ने मेरे और आपके ऊपर भी किया। यह बड़े दिन का सबसे बड़ा संदेश है कि अगर वो अनुग्रह ना करता तो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर ना आता। अगर वो अनुग्रह ना करता, वो मेरे और आपके लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान ना करता। अगर वो अनुग्रह ना करता तो मुझे और आपको पाप से छुटकारा ना मिलता। अगर वो अनुग्रह ना करता तो मैं और आप कभी भी उस अनंत जीवन के वारिस ना होते। हम तो पाप में थे, पाप में मर रहे थे, पाप में सड़ रहे थे, पाप में नाश होते, और पाप के कारण हमारे पर एक दंड ठहराया गया था, वो अनंत की मृत्यु, जहां अनंत काल परमेश्वर से दूर रहना और दांतों का पीसना और कष्ट को और अंधकार में रहकर जीवन को व्यतीत करना है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने ना केवल उस स्त्री पर अनुग्रह किया लेकिन मुझ पर और आप पर भी अनुग्रह किया। लेकिन यहां पर वो कह रहा है वो अनुग्रह। दूसरी बात, तब आगे चल करके वो यीशु के बारे में कुछ कहता है, 34 पद, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो कुंवारी हूं। स्वर्गदूत ने उससे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर आच्छादित होगा। मरियम के जब हम जीवन के बारे में देखते हैं तो हम उसके जीवन में बातें, इन सारी बातों द्वारा और भी आगे पढ़ेंगे कि वो नम्र थी, वो परमेश्वर की विश्वासनीय थी, वो परमेश्वर का भय मानती थी, वो परमेश्वर की कृपा पात्री थी और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ था। ये पांच बात, इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना है, इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि कभी भी मरियम ने अपने स्वयं में, अपने आप में या उसके संबंधियों ने उसको उससे ज्यादा स्थान नहीं दिया है। लेकिन बाद में चलकर हम जब इतिहास को पढ़ते हैं, रोमी शासन की बात करते हैं और रोमी शासन में किस प्रकार से चीजें तोड़ी मरोड़ी गई हैं, उसमें हम देखते हैं तब इसके रूप को बदला गया है। सो मरियम परमेश्वर की ओर से चुनी हुई है,
क्योंकि परमेश्वर का भय मानती है, परमेश्वर पर विश्वास करती है। कैसे हम जानते हैं, कैसे हम जानते हैं उस पर विश्वास करती है, तब वो उसके बारे में बताता है। और 38 पद में मरियम कहती है, मरियम ने कहा, देख मैं तो प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार ही मेरे साथ हो। देख मैं तो परमेश्वर की दासी हूं। सोच लीजिए, एक वो कन्या जो कुंवारी है, जिसकी अभी केवल एंगेजमेंट हो रही है, मंगनी हुई है, और उस समय में यह प्रथा थी कि मंगनी होने के बाद में पुरुष और स्त्री, पुरुष चला आता था अपने जान में, इसीलिए यौनोस के 14 अध्याय में वर्णन पाते हैं, और वहां पर पुरुष को जाकर के पहले अपना स्थान तैयार करना पड़ता था, और उस समय तक वो कन्याएं, वो कुंवारियां जो मंगनी हुई होती थी, वो प्रतीक्षा करती थी, और जब कार्य पूरा कर लेता था तब उसके बाद पुरुष आते थे और तब विवाह होता था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 14 अध्याय में कहा, मैं जाता हूं और जाकर तुम्हारे लिए घर एक स्थान तैयार करता हूं। ये उसी से रिलेटेड, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहां के कल्चर को, संस्कृति को जानते थे। और इसीलिए पौलुस आके जाके कहता है कि उसने हमारी सगाई एक कुंवारी के समान यीशु से लगाई है। इसीलिए प्रकाश वाक्य में जाते हैं, जो मेमने का ब्याह दुल्हन तैयार हो रही है। सो सब परमेश्वर के वचन के अनुसार है। सो यहां पर हम देख रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए उसके लिए सरल नहीं था इस बात को स्वीकार करने के लिए, अरे मेरी तो बदनामी होगी, लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरे परिवार के लोग क्या कहेंगे, उसने उसकी चिंता नहीं करी, लेकिन उसने परमेश्वर के कथन को बड़ी नम्रता के साथ विश्वास करते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए, अधीनता में डालते हुए उसने कहा, मैं तो प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार ही मेरे साथ हो। वो परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता दे रही है। मेरे प्रियो, हम मरियम की इसलिए आराधना नहीं करते जैसे लोग मानते हैं कि इन गुणों के कारण, हम मरियम को वो स्थान नहीं देते किसी और कारण से, लेकिन मरियम को परमेश्वर ने उपयोग किया है, इस्तेमाल किया है, इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि उसको अपने कथन को पूरा करना था। उसने अपनी प्रतिज्ञा को, अपने वाचा को जो उत्पत्ति में की थी उसको पूरा करना था, इसलिए किसी नारी को उसने चुनना था, लेकिन उन नारियों में से प्रभु की दृष्टि इस मरियम पर पड़ी, क्योंकि उसके सामने, उसके समक्ष वो उसकी कृपा दासरी बन गई और अनुग्रह पर हुआ। लेकिन ये अच्छा स्वभाव और अच्छा चरित्र है, एक परमेश्वर के भय मानने वाले का अच्छा चरित्र है। और जब हम अपने जवान बच्चियों को, बहनों को, बड़ों को देखते हैं, ये सच है कि हमारे अंदर भी परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा इस प्रकार के गुणों को उत्पन्न होना चाहिए, जो परमेश्वर के भय मानने से है, जो परमेश्वर के विश्वास करने से है, जो परमेश्वर के कृपा पात्र बनकर के जीवन को व्यतीत करने से संबंधित है। मरियम को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन हम उसकी पूजा भी नहीं कर सकते। हमें इस बात को समझना है। सो प्रभु सहायता करे मेरी और आपकी, कि हम जब परमेश्वर के वचन को देखते हैं और किन्हीं जीवनों के गुणों को देखते हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए, मैं निर्बल पात्र हूं, मैं निर्बल जन हूं, मैं निर्बल हूं, आप मेरी सहायता करिए कि आपके पवित्र आत्मा की सहायता द्वारा, आपके वचन के सहायता द्वारा ये गुण मेरे अंदर भी बढ़ सके, उत्पन्न हो सके और आगे बढ़ सके। और ना केवल प्रार्थना करना है, लेकिन मुझे और आपको प्रयत्नशील भी होना है कि उनकी बढ़ोतरी हो सके। बड़ा दिन मनाना सरल है, खुशियों को बांटना सरल है, लेकिन उस जीवन को अपने अंदर लेकर आगे बढ़ना यह कठिन है, और उसमें मुझे और आपको परमेश्वर की सहायता की जरूरत है। और इसलिए काश इन दिनों में मैं और आप और अधिक अपने जीवन के बारे में विचार कर सकें कि मेरे और आपके जीवन में क्या, जब इन जीवनों को, जब आप इन दो अध्यायों को पढ़ेंगे तो बहुत सारे गुण आप देखने पाएंगे लोगों के जीवन में, चाहे जकरिया का जीवन हो, चाहे हम यीशु के जीवन के बारे में भी आगे देखेंगे, औरों का जीवन हो, यूहन्ना का जीवन हो देखेंगे। और हम प्रार्थना करें अपने लिए, प्रभु उनका विकास मेरे अंदर हो सके, उनका निर्माण मेरे अंदर हो सके। सो पहली बात, सो मरियम को परमेश्वर ने इसलिए चुना क्योंकि परमेश्वर उसको उपयोग करना चाहता था। लेकिन अब दूसरी बात जिस पर हम थोड़ा सा रुकना चाहेंगे, वो एक बालक के जन्म के बारे में क्या कह रहा है। वो कह रहा है यहां पर 31 पद में, देख तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। अब दो चीज को हम देखना चाहते हैं, उस पुत्र का नाम, उस पुत्र का काम। उसका नाम, उसका काम, ये बहुत जरूरी है। जब हम बच्चों के नाम को रखते हैं, माता पिता प्रार्थना करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, तो ये अच्छा है कि हम उन नामों को रखें और उनके नामों के अनुसार उनसे प्रार्थना करें ताकि आगे चल के उनके काम ऐसे हो सके। नाम बहुत अर्थ रखता है, नाम बड़े दर्शन छोटे वाली बात नहीं। किसी ने कहा, सेठ अशरफी लाल के घर में टूटी खाट, गरीब दास के मील चल रहे साठ। नाम कुछ और है, चीज कुछ और है, वो नहीं होना है। पता नहीं कितने लोग समझे नहीं समझे, ना समझे तो अच्छी बात है। पर यहां पर एक जन है जो परमेश्वर की योजना में जिसका जन्म होने जा रहा है, लेकिन क्या हम उसके जीवन के बारे में देखते हैं, वो क्या कह रहा है। तू उसका नाम यीशु रखना, पहली बात तू उसका नाम यीशु रखना। मत्ती एक अध्याय और उसके 21 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि वो अपने लोगों का उद्धार करेगा। मत्ती उसका पहला अध्याय, अच्छा हम उस पद को देख लें, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह के नाम के बारे में दिया गया है, उस नाम का अर्थ क्या होगा। 21 पद, वो पुत्र जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु नाम का अर्थ है उद्धार करता, वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ अद्भुत है। कह रहा है कि उसका नाम यीशु रखना, वो क्या करेगा। पहली बात, वो महान होगा, वो महान होगा, वो अपने कार्यों में महान होगा, वो अपने निर्णयों में महान होगा, वो अपने जीवन की साक्षी में महान होगा, वो अपने जीवन महान। केवल ये नहीं कि कोई ऐसे अद्भुत काम करके महान हो जाए थोड़े देर बाद, नहीं नहीं नहीं, महानता का मतलब यहां पर है उसके स्वभाव, उसका गुण, उसकी सेवा, उसके चरित्र, सब कुछ में उसके महानता उसमें दिखाई देगी। जो सब कुछ सर्वोच्च उसका जीवन इस संसार में है। और मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह जितने दिन इस पृथ्वी पर है उन्होंने एक महानता के जीवन को व्यतीत किया। सो पहली बात, वो महान होगा, ना केवल महान होगा लेकिन परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। परम प्रधान का पुत्र कौन है? परम प्रधान हमारा परमेश्वर, जो सिंहासन पर विराजमान है, जिसके लिए यशाया कहता है स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। और परमेश्वर के वचन में हम बार बार इस बात की साक्षी को पाते हैं, ना केवल जन्म के समय में स्वर्गदूतों के द्वारा उसके लिए कहा गया, लेकिन बपतिस्मे के समय में उसके लिए साक्षी दी गई, ये परमेश्वर का पुत्र है इसकी सुनो। जैसे बपतिस्मा लेके निकल के आया यीशु, निकल के आए कबूतर के नाई पवित्र आत्मा उसके प्रणला और सब उससे ये आवाज आई कि ये परमेश्वर का पुत्र है उसकी सुनो। जब आप आगे बढ़ते हैं उसकी सेवा काल में, जैसे आप मत्ती उसके 17 अध्याय में आते हैं, 17 अध्याय में जैसे आप आते हैं और जब वो शिष्य के साथ उस रूपांतर पर्वत पर है, वहां पर हम देखते हैं, वहां पर भी उसके लिए भविष्यवाणी लिखी गई, ये परमेश्वर का प्रेरित पुत्र है उसके सुनो। जब हम क्रूस पर देखते हैं उसके पास, क्रूस के समय में लोगों ने साक्षी दी, अंतिम साक्षी ये थी, ये निश्चय परमेश्वर का पुत्र है, अंतिम साक्षी। जन्म के समय में, सेवा के समय में, क्रूस पर ये साक्षी, ये परमेश्वर का प्रेरित पुत्र है इसकी सुनो। ये परम प्रधान का पुत्र होगा, किसी दुनिया में किसी के लिए ऐसी साक्षी नहीं दी गई। माफ कीजिएगा, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, भाई लोग यहां पर हैं और हम साथ सुनते हैं और कई भाइयों को भी मालूम है। एक यहां पर एक
मौलवी साहब आते हैं और अक्सर वो बातचीत करते हैं भाइयों से। एक दिन वो आ गए, भैया ढूंढ रहे थे, भैया नहीं थे। मैंने मौलवी जी काम करिए, मैं आपके सामने तीन प्रश्न रख रहा हूं, इसको खोज कर लाइए, तब आपसे बात करूंगा मैं कि कुरान में कितनी बार प्रभु यीशु मसीह का नाम आया है, मोहम्मद साहब का ज्यादा आया या यीशु मसीह का ज्यादा आया। दूसरी बात मैंने कही, कुरान में कितने टाइटल यीशु मसीह के लिए हैं, कितने टाइटल उपनाम जो हैं मोहम्मद साहब के लिए। तीसरी बात, कितनी बार मरियम का नाम आया है, किसी और स्त्री का नाम आया ही नहीं आया, वो चले गए रास्ते तक नहीं आए। मैंने खोज के लाइए बताइए। हमारे को किसी ने एक वीडियो दिया, भाई लोगों ने देखा है, उसमें बहुत अच्छे एक व्यक्ति की साक्षी है जिसमें सारी चीजें हैं, वो कुरान को पढ़ के प्रभु में शरण। मैं क्यों कह रहा हूं, सिर्फ कोई बहस बने नहीं, लेकिन ये बड़ी बात है, श्रेष्ठ बात है और मेरे और आपके लिए आनंद की बात है कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिसको अपने जीवन में लेके चल रहे हैं, जिसकी सनातन योजना बनाकर परमेश्वर अपनी योजना में होकर उसको पूरा किया है, और इसीलिए परमेश्वर ने ये जो आज हम बड़े दिन के रूप में बनाते हैं उसको इस उत्सव को दे दिया। हम ऐसे देश में हैं, जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप लोग क्यों त्यौहार मनाते हैं, कुछ ऐसे भी मसीह जो त्यौहार नहीं मनाते, तो मैं अक्सर ये उत्तर देता हूं कि हम ऐसे देश में रहते हैं जो त्यौहारों को मनाने वाला देश है, वो ईस्टर के अर्थ को इतना नहीं समझते, गुड फ्राइडे के अर्थ को इतना नहीं समझते जब तक व्यक्तिगत इस बात में, लेकिन बड़े दिन को सब समझते हैं। और हम इसके माध्यम के द्वारा लोगों तक सुसमाचार पहुंचाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य पहले स्वयं आनंद मनाना नहीं है, वो तो एक भाग हो जाता है परिवार में बच्चों के साथ और मित्रों के साथ है, नहीं है, लेकिन उससे बड़ी प्राथमिकता यह है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में बड़े दिन में हम उस संदेश को लोगों तक पहुंचाएं जो परमेश्वर ने एक बड़ा काम किया। क्यों बड़ा दिन, क्यों बड़ा दिन, क्या इससे दिन बड़े हो रहे हैं? नहीं, दिन तो 23 दिसंबर से बड़े होते हैं, दिन की बात नहीं है, लेकिन यह बड़ा काम परमेश्वर का था कि वो परमेश्वर जो सेनाओं का यावा, जो स्यात्म प्रभाजमान है, वो परमेश्वर मनुष्य देह धारण करके इस पृथ्वी पर आ गया, मनुष्य बनकर आ गया, ताकि वो मेरे और आपके पापों के लिए अपने आप को अंत क्रूस पर बलिदान करे। केवल इस पृथ्वी पर रहकर अगर वो शिक्षा देता, आश्रम करता और सब कुछ करके चला जाता, लेकिन वो बलिदान का कार्य पूरा ना होता तो फिर भी वो सब कुछ अधूरा होता। तो ये बड़ा काम प्रभु यीशु मसीह ने किया, उस बड़े काम करने के लिए उसने पृथ्वी पर जन्म लिया, इसलिए ये बड़ा दिन इसलिए बन गया क्योंकि परमेश्वर ने एक मानव जाति के लिए बहुत बड़ा काम किया। और इसलिए वो कहता है कि वो ऐसा परमेश्वर महान होगा, ना केवल महान लेकिन तीसरी बात है, परम प्रधान का पुत्र प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा, दाऊद का सिंहासन। फिर जब हम पीछे उत्पत्ति में जाते हैं, अगर उत्पत्ति के आप आखिरी अध्यायों को देखेंगे 48-49 अध्याय को, तो याकूब मृत्यु के समय में अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रहा है और उन आशीर्वादों को देखेंगे तो वह यहूदा के बारे में है, और यहूदा के बारे में यहूदा एक सिंह होगा और ऐसा होगा, उससे ऐसा होगा, ऐसा होगा। फिर हम उसके बाद देते हैं उसी के तुन से ऐसा होगा, फिर यशे में आते हैं जो दाऊद का पिता है, उसकी भविष्यवाणी देखते हैं, उसके लिए जो भविष्यवाणी, फिर दाऊद की भविष्यवाणी पढ़ते हैं, चाहे आप शैमल में चले जाइए, चाहे आप भजन संहिता में चले जाइए, और किस क्रम से परमेश्वर कार्य पूरा कर रहा है। और इसलिए वो सिंहासन जो दाऊद का सिंहासन था वो एक बात का ये चित्रण था कि परमेश्वर ये दाऊद सुलेमान ये राजा तो ठीक है आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन इसके बाद एक राजा होगा जो इसी कुल से इसी वंश से आगे बढ़कर निकलेगा और जो अनंत काल का शासक होगा, अनंत काल का राजा होगा। हम अभी सुबह दानियेल की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं सुबह अपने डिवोशन में, और हमने कल ही हम देख रहे थे पहले अध्याय में कि दानियेल के पहले अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के बारे में किस प्रश्न है कि वो अनंत काल तक राज करेगा, अनंत काल तक राज करेगा।
और यहां पर वो कह रहा है कि वो सिंहासन उसे दे, कौन सिंहासन जो परमेश्वर ने अनादिकाल से अपनी सनातन योजना में ठहरा दिया था। और मैंने पहले कहा था, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, परमेश्वर बहुत वर्ष पूर्व से जो योजना बनाई है उन योजना को अपने समय में अपने तरीके से पूरा करता है। और परमेश्वर इस योजना को जो उसने पहले अदन की वाटिका समय बनाई थी या सृष्टि से पहले उसने बनाई थी उसको किस क्रम में लेकर के पूरा कर रहा है, और हम उसको यीशु में होते देख रहे हैं पूरा। और इसलिए वो कहता है वो सिंहासन उसे देगा जिसका हम प्रकाश वाक्य में बहुत सुंदर रीति से वर्णन पाते हैं, और याकूब के घराने पर अनंत काल तक राज करेगा। मैंने याकूब के बारे में अभी आपसे शेयर करा किस प्रकार से याकूब के वंशज के साथ आगे पीढ़ी बढ़ी है। उस देगा और तब वो कहता है और उसके राज का अंत ना होगा, उसके राज का अंत ना होगा। बड़ा दिन का संदेश ये संदेश है कि परमेश्वर ने इस संसार पर दृष्टि की है, परमेश्वर ने मुझ पर और आप पर दृष्टि की है, और इस पर दृष्टि करते हुए उसने अपने ऐसे राज की स्थापना की है जिस राज का सारे राज का अंत हो जाएगा, लेकिन उस राज का अंत नहीं होगा। और मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए सबसे बड़ी आशीष यह है कि उसने उस राज को स्थापित करने के लिए ना केवल जन्म लिया, ना केवल शिक्षा दी, ना केवल आश्रय कम किया, लेकिन उस राज को स्थापित करने के लिए उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और आज सिंहासन पर विराजमान है। एक दिन फिर से आएगा ताकि प्रत्येक उन लोगों जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसकी चुनी कलीसिया है, जो उसकी दुल्हन है, जो ठहराए गए लोग हैं, उनको वो ले जा करके उस राज में रखे और अनंत काल तक हम उसके साथ उस राज में आशीष और आनंद पाए। यह है बड़े दिन का संदेश। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने राज की स्थापना करने के लिए मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आ गया। तब आगे चल के कहता है, मरियम सरदूत ने सरदूत से कहा यह कैसे हो सकता है। आगे चल के फिर वो एक और बात कहती है, 35 पद को पढ़ रहा हूं मैं। सरदूत ने उसे कहा पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और प्रधान प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर आच्छादित होगा, इस कारण वो पवित्र पुत्र जो उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परम प्रधान का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र। बड़ा दिन, परमेश्वर पुत्र मनुष्य बनकर स्थिति पर आया है। मेरे और आप पर उसने कृपा दृष्टि की है, मुझ पर और आप पर उसने अनुग्रह किया है। हम क्या थे, जैसे हम अय्यूब की पुस्तक में देखते हैं, हम तो तुच्छ निकृष्ट, हम तो पाप में सड़ रहे थे, लेकिन फिर भी उसने कृपा दृष्टि की और इस पृथ्वी पर वो मनुष्य बनकर आ गया। मेरे प्रियो, तब आगे चल को कहता है वो एलीशिबा का उदाहरण देते हुए 37 पद में, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के लिए ये कुछ भी असंभव नहीं है। ये मनुष्य के सामने आरंभ से एक संघर्ष था। अब्राहम के सामने संघर्ष आया, ये कैसे होगा, हम तो बूढ़े हो चुके, कैसे होगा, यह असंभव बात है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए उत्पत्ति उसके 18 अध्याय उसके 14 पद में। आगे चल के पढ़ते हैं अय्यूब के लिए। अय्यूब जब इन बातों को देख रहा था, सारी बातों को देख रहा था, तो तब अय्यूब कह सकता ओ परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। समझिए मेरे प्रियो, ये सच है, परमेश्वर जो ठानता उसको पूरा करता है, परमेश्वर के कोई कार्य कठिन नहीं है। बार बार वचन को दे, यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह की सेवा में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने मुख से कहा मत्ती में भी और मरकुस में भी कि परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए क्या असंभव है, एक स्त्री का, कुंवारी स्त्री का एक बालक को जन्म देना यह असंभव है, लेकिन परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ में, पवित्र आत्मा द्वारा वो कार्य संभव किया है। मनुष्य बनकर वो किसी जो दुनिया में आज चर्चाएं कहां कहां से कैसे कैसे कहां कोई यहां से निकल गया कोई वहां से निकल गया कोई वहां से नहीं 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 वो नहीं है। और इसलिए मेरे प्रियो ये सच है जब हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में बात देखते हैं तो हम ये देखते हैं बड़ा दिन न केवल बड़ा दिन है लेकिन इसलिए कि परमेश्वर ने असंभव कार्य को संभव किया है अर्थात मनुष्य के छुटकारे के लिए ये असंभव था कि कोई भी व्यक्ति उसके लिए बलिदान हो या उसको उसके लिए जान दे या कोई उसके पीड़ा उठाए या कुछ और करे लेकिन वो उसमें प्रभु यीशु मसीह में संभव हो गया। उसने उस असंभव काम को संभव किया कि मेरे और आपकी पीड़ा को मेरे और आपके दर्द को लेकर वो क्रूस पर चढ़ गया। क्यों? कारण क्या था? कारण क्या था? कारण ये था कि जब उसने मुझे और आपको सृजा था तो उसने अपने हाथों से मुझे और आपको बनाया था। उसका उसमें प्रेम था, उसका उसमें समय था, उसका उसमें परिश्रम था, उसका उसमें चाहना थी, उसकी एक लालसा थी। क्या लालसा थी? लालसा ही थी, ये जिसको मैंने बनाया है मेरे स्वरूप में, मेरे रूप में मैंने अपने समानता स्वरूप में बनाया है, ये मेरे साथ सहभागिता करेगा, मेरे साथ सहभागिता करेगा। और इसकी सहभागिता के कारण मेरा मन आनंद से भरेगा। लेकिन मेरे प्रियो बार बार हम उस दुखदायी कहानी को दोहराते हैं, बार बार हम स्मरण करते हैं, पाप ने वो सब कुछ बिगाड़ दिया, पाप ने मेरे और पाप ने मुझे और आपको परमेश्वर से इतना अलग कर दिया। अब असंभव था कि कोई भी व्यक्ति पुनः उसके पास वापस आ सके, ना तो धर्म कर्म ला सकते थे, ना रीति विधियां ला सकती थी, ना किसी प्रकार का बलिदान ला सकता था, ना किसी और की योजना ला सकती, असंभव था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस असंभव काम को प्रभु यीशु मसीह में पूरा हुआ, प्रभु यीशु मसीह पूरा हुआ। यह है बड़ा दिन, यह बड़ा दिन का संदेश है। मेरे प्रियो मुझे आपके बारे में नहीं मालूम, मैं आपके बारे में ज्यादा नहीं जानता, क्या आपने इस असंभव काम को अपने जीवन में अनुभव किया है? आप संभवतः आज भी संसार के पाप में चल रहे हैं, अशांत हैं, परेशान हैं, प्रत कर रहे हैं, कहीं यहां भटक रहे हैं, कहीं वहां भटक रहे हैं, कहीं वहां भटक रहे हैं, और भटकते भटकते थक गए हैं, हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, आपके पास कोई आशा नहीं है, मैं क्या करूं? लेकिन मरियम की तरह साधारण विश्वास कीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर ने उस असंभव काम को आपके लिए संभव किया है। और विश्वास करके उसके पास आइए, उससे अपने पापों की क्षमा को मांगिए, कहिए मैं पापी व्यक्ति हूं, मैंने इस पाप से छुटकारे के लिए बहुत कार्य प्रयास किया है, लेकिन मेरे लिए छुटकारे के लिए मैं सब कुछ करने में अब भी जो करा है वो सब असंभव हो गया, पर मैं आज अपने पापों को मानकर आपके पास आना चाहता हूं, आपके पास आना चाहती हूं, मैं आप पर विश्वास करता हूं, मैं आप पर विश्वास करती हूं, मेरे अपराधों को पापों को क्षमा कीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। ओ मेरे प्रिय भाई बहनों, जब इस प्रकार की विश्वास की प्रार्थना को लेकर आप प्रभु के पास आएंगे, संसार पाप को क्षमा नहीं करता यह असंभव है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पाप को क्षमा करता है यह संभव है। परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, और जानिए वो आपके पापों को क्षमा करेगा, आपको अपना बेटा और बेटी बनाएगा, आपको अपने गले से लगाएगा, और वो युक्तियां जो उसने आपके लिए अनादिकाल से बनाई है वो युक्तियां मेरे और आपके जन्म में परमेश्वर पूरी करेगा। मेरे प्रियो परमेश्वर मेरी और सहायता करे, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। क्या आपने उसको अपने जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता पाया है? अगर प्रभु उद्धारकर्ता पाया है, आप इस बात में आनंदित हैं, तो प्रश्न यह है, बालक ने जन्म लिया है, बालक ने जन्म लिया है, लेकिन जन्म के साथ साथ वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। लूका के चल के वर्णन करता है कि वो चार क्षेत्र में बढ़ता गया,
क्या वो बालक आपके जीवन में बढ़ रहा है, क्या आपके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है। काश इन दिनों में जरूर आप आनंद मनाइए, खुशी मनाइए, लेकिन उस खुशी के समय में, उस आनंद के समय में प्रभु यीशु मसीह को मत भूलिए, यीशु को मत भूलिए। यीशु को अलग हटाकर आप प्रभु यीशु मसीह को जन्म को नहीं मना सकते। संसार यही तो गलती कर रहा है, संसार यही तो गलती कर रहा है। यीशु मसीह अलग है, हम दुनिया को लेके चल रहे हैं। एक मसीह जीवन इस बड़े दिन के समय में प्रभु यीशु मसीह के संदेश को लेकर चलने वाला संदेश है, जीवन है, संदेश है। वो अद्भुत है परमेश्वर, वो महान होगा, वो प्रधान का पुत्र कहलाएगा, उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, अनंत काल का राज वो राज करेगा, उसके राज का अंत नहीं होगा। मेरे प्रियो, यह समय काम प्रभु में समय है। क्या आप उसके राज में प्रवेश करना चाहते हैं? वो अनंत काल का पर्व अद्भुत जगह है। अगर प्रकाश वाक्य 19 अध्याय से आप आगे पढ़ेंगे 19-20 पढ़ना चाहिए इन अध्यायों को, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा दोनों स्थानों की जगह। वो अनंत काल का राज जो परमेश्वर का कितना अद्भुत है, अनंत काल की मृत्यु और दंड का स्थान जो है कितना भयंकर और भावीहीन है, उसको देखना होगा। चुनाव आपके ऊपर है, चुनाव मेरे और आपके ऊपर है। काश परमेश्वर मुझे और आपको समझ दे कि मैं और आप बड़े दिन के सच्चे अर्थ को समझ करके उसे अपने जीवन में लेकर तब आगे बढ़ सके, तब परमेश्वर हमारे जीवन में वास करते हुए महिमा पाएगा और हम लोगों को बता पाएंगे ओ यीशु इसलिए जन्मा है, केवल इसलिए नहीं कि केक और मिठाई और खाई जाए और आनंद मन जाए, इसलिए जन्मा है ताकि वो कार्य तुम्हारे जीवन में असंभव कार्य संभव हो सके, तुम भी पाप से छुटकारा पाओ और अनंत जीवन में प्रवेश कर सको।